नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं।
जी,
पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है जो अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, मानव में देवत्व ऐसे उभरेगा।
हाँ, बहुत गहरा विषय है ये।
तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार हम इसी जीवन में अपने अंदर दिव्यता कैसे जगा सकते हैं
और वो जिसे स्वर्ग कहते हैं उसका अनुभव यहीं कैसे कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल।
और देखिए, इसमें जो सबसे बुनियादी बात पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो ये है कि स्वर्ग और नरक कोई बाहर की जगह नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी मन की स्थिति है और भगवान ने हमें ये पूरी स्वतंत्रता दी है कि हम चुने जी
कि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं या नरक में, अपने कर्मों से, अपने विचारों से।
बिल्कुल, ये चुनाव हमारा अपना है।
तो फिर सवाल उठता है कि अधिकतर लोग दुखी क्यों दिखाई देते हैं अगर चुनाव हमारा है तो?
हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव इसका विश्लेषण करते हैं कि हमारे जो दुख हैं उनमें से लगभग 60%।
60%? काफी ज्यादा है तो।
हाँ, 60% दुख हमारी अपनी अतृप्त इच्छाओं, हमारी कल्पनाओं और कामनाओं की वजह से है। मतलब जो चीजें पूरी नहीं हुई उनकी वजह से।
शारीरिक दुख तो शायद उतने नहीं होते होंगे जितने मानसिक।
बिल्कुल, शारीरिक तकलीफें तो कभी कभी होती हैं, पर मन की ये जो बेचैनी है कि ये नहीं मिला, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये तो लगातार चलती रहती है।
अच्छा, तो इसका मतलब दुख का स्रोत बाहर कम अंदर ज्यादा है।
हाँ जी।
तो फिर इसका समाधान क्या बताया पूज्य गुरुदेव ने, इन इच्छाओं को कैसे संभाला जाए?
समाधान उन्होंने बताया है, अपनी खुशी को अपनी इच्छाओं के पूरा होने या ना होने से मत जोड़िए। यहीं पर पूज्य गुरुदेव कर्म योग का सिद्धांत लाते हैं।
कर्म योग, गीता वाला?
हाँ वही, मतलब अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने कर्तव्य पर लगाइए, अपना काम, अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से कीजिए।
और खुशी इस बात में ढूंढे कि हमने अपना कर्तव्य निभाया या नहीं।
बिल्कुल, नतीजा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखिए परिस्थितियां या दूसरे लोग वो हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते।
सही बात है।
तो मतलब सुख का जो केंद्र है वो बाहरी चीजों से हटाकर अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पालन पर ले आना।
एकदम सही,
यही कर्मयोगी बनना है। इससे क्या होता है, आपको 24 घंटे खुश रहने का एक अवसर मिलता है,
क्योंकि कर्म तो हम हमेशा कर सकते हैं।
हाँ, और साथ में एक और बात कहते हैं, उम्मीद अच्छी रखे पर बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहे मानसिक रूप से।
अच्छा, ये संतुलन जरूरी है।
जी, और फिर देवता का एक और लक्षण बताते हैं पूज्य गुरुदेव।
वो क्या है?
मिल बांटकर खाना।
मिल बांटकर खाना?
हाँ, वे कहते हैं कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। मतलब हमारे पास जो भी संपदा है, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, स्वास्थ्य हो या भोजन ही क्यों ना हो,
उसे दूसरों के साथ साझा करें।
जी, दूसरों के लाभ के लिए भी उसका उपयोग करें, दूसरों की मुसीबतों को भी बांटें।
ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो गई, और आत्मवत सर्वभूतेषु।
हाँ, उसी का व्यवहारिक रूप है ये, अपनी सुविधाओं को बांटना और दूसरों के दुखों में हिस्सेदार बनना। इससे वो जो संकीर्ण मैं होता है ना, उसका विस्तार होता है
और व्यक्ति देवता बनता है।
सही, इसी से जुड़ा एक और नजरिया है जीवन जीने का, खिलाड़ी की जिंदगी।
खिलाड़ी की जिंदगी, इसका क्या मतलब हुआ?
जैसे कोई खिलाड़ी होता है वो हार और जीत दोनों को समान भाव से लेता है, खेल का हिस्सा मानता है।
हाँ बिल्कुल।
वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में चेहरे पर शिकन ना आने दें, संभाव रखें।
ताश के खेल की तरह पत्ते चाहे जैसे भी मिले, खेलना तो है ही।
हाँ, और चिंता और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त रहें, वर्तमान में जिए।
वर्तमान में जिए, भूतकाल से सिर्फ अनुभव लें।
हाँ, उसकी चिंता या प्रशंसा में न उलझें और भविष्य की योजना बनाएं, पर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा न पालें कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा।
जवान आदमी की तरह वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
बिल्कुल
ठीक है, लेकिन एक सवाल और उठता है, दुनिया में बुराइयां भी तो बहुत हैं, उनसे कैसे निपटें? कई बार गुस्सा आता है, द्वेष होता है।
हाँ, ये स्वाभाविक है, लेकिन पूज्य गुरुदेव द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, इन सब से बचने को कहते हैं,
क्योंकि ये आग पहले हमें ही जलाती है।
तो फिर करें क्या?
उपाय बताते हैं, डॉक्टर वाला दृष्टिकोण अपनाएं।
डॉक्टर वाला मतलब?
जैसे डॉक्टर रोगी से नफरत नहीं करता, रोग से लड़ता है ना?
हाँ।
वैसे ही व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की बुराइयों, उसके दोषों, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करें बिना उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए।
ये बहुत अहम बात है, व्यक्ति और उसकी बुराई में फर्क करना। जी,
आत्मनिर्भरता पर भी तो जोर दिया है पूज्य गुरुदेव ने।
हाँ बिल्कुल, अपनी उन्नति के लिए खुद पर निर्भर रहें, दूसरों से सहायता की बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें।
इससे निराशा और खींच से बचेंगे।
हाँ, और साथ ही विधेयात्मक चिंतन अपनाएं, यानी सकारात्मक सोच।
सकारात्मक सोच मतलब बुराई को हटाने के बजाय अच्छाई को बढ़ाएं।
हाँ बिल्कुल, अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक दिया जला दें। जो मिला है, ये मनुष्य जीवन, ये बुद्धि, जो भी साधन है, उसके लिए कृतज्ञ हों। जो नहीं मिला, उसी का रोना न रोते रहें।
ये अभावग्रस्त मानसिकता ही नरक है, ऐसा कहा जा सकता है।
सही कहा आपने, अभाव की सोच ही नरक है।
और इस सकारात्मकता को एक्शन में कैसे लाएं?
देने की प्रवृत्ति विकसित करके।
देना सिर्फ धन?
नहीं नहीं, सिर्फ धन नहीं, आप प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, अपना समय, अपना श्रम दे सकते हैं।
अच्छा,
जरूरतमंद के लिए।
ये तो साधु और ब्राह्मण का जीवन हुआ, मितवई, संतोषी और परोपकारी।
हाँ, समाज के लिए समर्पित, जमाने के बहाव के साथ बहने के बजाय आदर्शों की तरफ चलना।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानव में देवत्व का उदय कर्मयोग से होगा।
हाँ,
साझा करने की वृत्ति से, खिलाड़ी जैसी समता से,
सकारात्मक सोच से,
आत्मनिर्भरता से और देने के स्वभाव से।
जी बिल्कुल, ये सब हमारे अंदर के दृष्टिकोण को बदलने का आह्वान है।
तो चुनाव पूरी तरह हमारा अपना है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव अंत में यही सवाल छोड़ते हैं, देवता बनना है या राक्षस बनना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है।
सोचने वाली बात है।
तो आज के लिए एक विचार ये हो सकता है कि आज जो हमने बातें की, उनमें से किसी एक सिद्धांत को भी अगर हम आज अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा प्रयास करें, तो देखें कि हमारे स्वर्ग या नरक के अनुभव में क्या फर्क पड़ता है।
बहुत सुंदर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
बिल्कुल।
ओम शांति।